27/12/1995 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 148
जब स्वपद को भूला हूँ, मैं मेरे स्वपद को भूल गया हूँ। मूल में हूँ कैसा हूँ वो मैं भूला हुआ हूँ। ये भूल को मिटाऊं, ये भूल को मिटाऊं, क्योंकि मेरा स्वपद तो जैसा का वैसा बना बनाया हुआ है, नहीं नया बनाने का नहीं है, वो तो जैसा है वैसा नदी का है। मैं भूला हुआ हूँ, उसको संभालू तो मैं ऐसा हूँ। बस उतना ही करना है। क्योंकि वे अचेतन है, कर्म अचेतन नहीं है क्या? चेतन है, परमाणु है ना कर्म के, तो वो अचेतन है और मैं चेतन हूँ, तो मुझे कर्म कैसे स्पर्श सकता? अचेतन चेतन को कैसे स्पर्श करता है? स्पर्श कर सकता नहीं है। दूध में पानी डाला है तो पानी का दूध हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ तो बढ़ गया। एक बर्तन में थोड़ा दूध था, उसमें पानी डाल दिया तो दूध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो दूध का पानी का दूध हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। मिलाने पर भी पानी पानी रहा, दूध दूध रहा है। ऐसे शरीर संयोग कर्म संयोग होने पर भी चेतन चेतन रहा, अचेतन अचेतन रहा, परमाणु परमाणु रहा, जीव जीव रहा। परमाणु में चैतन्य का प्रवेश नहीं, कोई परमाणु सजीवन होता नहीं और जीव में परमाणु का कोई प्रवेश नहीं है। हाँ, इसलिए हम असर होते हैं। उसका कारण कि हम उसमें अपनत्व कर लेते हैं। हाँ, हो जाता है। हाँ, एम एच ज्ञान राग रूप थतु नहीं, राग ज्ञान रूप होता नहीं कभी। ज्ञान हमेशा ज्ञान ही रहता, राग हमेशा राग रहता। जानने मात्र, दर्शन देखने मात्र, सत्ता अस्तित्व मात्र तथा वीर वस्तु निष्पन्न सामर्थ्य मात्र। केवल वीर मैंने बल पुरुषार्थ, वस्तु निष्पन्न मैंने जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा ही परिणमन करने का कराने का जो गुण है उसको पुरुषार्थ कहने में आता है। ऐसा प्रतीति भाव को, रुचि भाव को, प्रतीति भाव और रुचि भाव दोनों एक अर्थ लिया है, ऐसे ऐसा प्रतीति भाव को, रुचि भाव को आस्तिक्यता रूप श्रद्धान ने श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कैसे कहते, किसको कहते हैं? कि अपना जो स्वरूप है ज्ञान जानने मात्र, दर्शन देखने मात्र, सत्ता अस्तित्व मात्र और पुरुषार्थ वस्तु निष्पन्न सामर्थ्य, उसको साक्षात्कार क्या है कि वस्तु को जैसी है वैसे परिणाम में प्रकट कर देता है। ऐसे प्रतीति भाव को, ऐसी रुचि भाव को और आस्तिकता रूप सिद्धांत को श्रद्धा कहते हैं। आस्तिकता मैंने ऐसा मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, हूँ बनाता है। अस्तित्व में क्या आता है, आस्तिक में आस्था नहीं कहते हैं हम आस्तिक है नास्तिक है ऐसा। आस्तिकता क्या होते हैं सिद्धांत में होती है आस्तिकता, तो वो जैसा है वैसा मंजूर करता है, स्वीकार करता है। आस्तिकता से स्वीकार करता है, नास्तिक शास्त्रता से अस्वीकार करता है। ऐसा स्वीकार करना उसको श्रद्धान कहने में आता है। प्रतीति भाव, रुचि भाव, तो दोनों को हैं एक अर्थ है, शब्द अलग अलग है उसका भावी की है। प्रतीति भाव को हो, रुचि भाव को हो, या आस्तिक के रूप श्रद्धा भाव को हो, तीनों एक ही है, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा जो श्रद्धा है उसमें भाव क्या है, प्रतीति भाव है, श्रद्धा में भाव क्या है, प्रतीति भाव है, रुचि भाव है और आस्तिक भाव भी है। श्रद्धा में तीनों भाव है, खाली ऊपना है ऐसा ही, प्रतीति भाव भी है, रुचि भाव भी है और आस्तिक के भाव भी है, उसको श्रद्धा कहने में आता है। प्रतीति में क्या है, विश्वास, ऐसा ही हूँ, जैसा अनुभव में वेदन में आया वैसा ही हूँ, ऐसी प्रतीति। प्रतीति माने खात्री, प्रतीति माने खात्री, अपने गुजराती में खात्री के हिंदी में क्या कहते हैं, भरोसा, भरोसा, विश्वास। उससे मैंने उस श्रद्धांत से उत्पन्न हुए आनंद कंद में किस प्रकार से मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, किस प्रकार से मैं सुखी हूँ कि जानने से होने वाला आनंद, जानने से उत्पन्न आनंद थे ज्ञानानंद, स्वरूप को देखने से उत्पन्न आनंद थे वो दर्शनानंद, और परिणमन से उत्पन्न होने वाला आनंद को चारित्र आनंद। देखो सभी गुणों में आनंद दिया आपको, जानते ही आनंद हुआ तो ज्ञानानंद हुआ, दर्शन करने से आनंद हुआ वो दर्शनानंद हुआ, परिणमन करने से आनंद हुआ वो चारित्र आनंद हुआ। है तो एक ही समय में, लेकिन भेद से कहा। ऐसे सर्व गुणों का आनंद को, आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद, उसकी केली केली मैंने रमणता, स्वरूप में परिणति को रमाना वही है। आनंद से परिणति स्वरूप में रमणता करती है आनंद के कारण से। आत्मा में आनंद नाम का ज्ञान की भाषा में साइंटिफिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उसमें गुणों को जो शक्ति है, पदार्थ के गुण है, शक्ति है, उनको प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस कहने में आता है। क्या उसकी प्रॉपर्टी बोली जाती है, स्थाई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इनके जो धर्म है उसको कैरेक्टर्स कहते हैं, वो लिया है विज्ञान और धर्म में, वो बात लिया है, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स ऑफ द सब्सटेंस, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें आता है कि नहीं आता है केमिस्ट्री में, तो ये इनके कैरेक्टर हैं। जैसे मार्बल है, मार्बल मार्बल की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट हैं के कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और ये चूना उसके लगाते हैं दीवार पर, वो भी क्या है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, प्रॉपर्टी एक ही है। क्या दोनों का प्रॉपर्टी तो एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन चूना चिकना होता है, वो दीवार पर चौंटता है, जबकि मार्बल का पाउडर करे वो चिकना होगा नहीं, वो रूखा रहेगा। तो दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है और प्रॉपर्टी एक सी है। ऐसे जीव, सभी जीवों की प्रॉपर्टी एक सी है, कैरेक्टर सबका अलग अलग है कि नहीं, ये सब साइंस है। तो उसमें आनंद के, आनंद नाम का जो गुण है वो जीव की प्रॉपर्टी है। और जब स्वरूप का ध्यान लगता है तो आनंद गुण परिणमन करता है, और स्वरूप को जान, वो आनंद है, इसका वो ज्ञान का भी वो रूप है, ज्ञान का भी वो रूप है। तो ज्ञान शुद्ध होता है तो वो आनंद को धारण करता है और आनंद गुण भी प्रकट होता है। तो ज्ञान का आनंद और आनंद का भी आनंद। सुख भी इसकी प्रॉपर्टी है, सुख भी होता है, शांति भी होती है, आनंद भी होता है, सब होता है, सभी गुण प्रकट होता है। जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो सुख भी उत्पन्न होता है, आनंद भी उत्पन्न होता है और शांति भी मिलती है। सब फीलिंग में आता है, तीनों फीलिंग में आता है। हाँ, नहीं, आनंद गुण प्रकट रूप में अनुभव में आता है। फीलिंग में आनंद विशेष रूप से आता है, आनंद की विशेषता है, आनंद की विशेषता है। आनंद है तो उल्लास है, आनंद का उल्लास होता है। हाँ, तो उल्लास वो विशेष रूप से अनुभव में आता है। बात को एक और सूक्ष्म करने के लिए कि वेदन तो ज्ञान का होता है, वेदन करने का धर्म कैरेक्टर किसका है, और ज्ञान का रूप भी आनंद है। तो अपने रूप सहित वेदन में आता है और आनंद प्रकट होता है, वो भी ज्ञान में झलकता है। तो एक साथ दो बात हो गई, आनंद प्रकट हुआ वो भी ज्ञान में आया, और ज्ञान का रूप जो आनंद है वो भी प्रकट अनुभव में आया, वेदन में आया। तो आनंद है वो घनिष्ठ रूप से अनुभव में, दोनों एकाकार होकर के अनुभव में आता है, भेद नहीं पड़ता वहां, ज्ञान और आनंद का भेद नहीं पड़ता है। इस तरह से विशेष रूप से आनंद होता है, जब अनुभव होता है तो बहुत आनंद होता है, पूर्व आनंद होता है। ऐसा आनंद वचन गोचर होता है, जो वचन में कहा जाता है। ऐसे सर्व गुणों का आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद क्या है, ऐसे सर्व गुणों का आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद, पूरा स्वरूप ही आनंद कंद है। स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप कितना परसेंटेज, एक प्रश्न समझने के लिए लेते हैं कि आत्मा में अनंत गुण है और एक एक गुण है वो संख्या से के हिसाब से एक है और ऐसे अनंत गुण है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो कितना परसेंटेज में, सौ के सौ प्रतिशत आनंद ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप 100% आनंद स्वरूप है, सभी गुणों का परसेंटेज कितना है 100% होता है, ऐसा ऐसा ही होता है। जैसे एक मनुष्य का कितना संबंध होता है कि वो अपना पुत्र का तो पिता है और अपने पिता का पुत्र है, तो 50% पुत्र है और 50% पिता है, 100% पिता है और 100% पुत्र भी 100% है और पिता भी 100% है, क्या नहीं? जितना संबंध है उतना 100% है, मामा का भांजा भी 100% और भांजा का मामा भी 100% है, अधूरा नहीं है कहीं भी, होता है ऐसा, सब गुणों से 100% पूरा है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है 100%। नहीं, एक साथ गरीब अमीर नहीं होता है, लेकिन बाप बेटा तो एक साथ होता है क्या? जो अमीर है वो गरीब नहीं है, गरीब है वो अमीर नहीं है, लेकिन बाप बेटा तो एक साथ है, मामा भांजा भी एक साथ है, ऐसे ज्ञान स्वरूप भी एक साथ है, आनंद स्वरूप भी एक साथ है, जितने भी गुण है उतने स्वरूप एक साथ भी है, 100% के 100%। सोमकम दशा में ज्ञान की मुख्यता है, आनंद की इतनी मुख्यता, इसलिए सुख समूह हुआ हूं क्या पर? सर्व गुणों का आनंद का मूल निज स्वरूप आनंद कंद, उसमें केली मैंने रमणता स्वरूप में परिणति को रमाना वही है, ठीक करना, परिणति को रमाना मैंने जमाना, वही निज स्वरूप की रमणता है, इसलिए सुख समूह हुआ हूं, इससे दूसरा कोई ऊंचा उपाय, उच्च कोटि का उपाय नहीं है। परम कृपालु भगवान भव्य जीवों को यह शिव राह, मैंने शिव मार्ग, कल्याण मार्ग, मोक्ष का मार्ग, सोलह मैंने आसान करके दिखाया है, सुगम, हाँ सुगम करके, सरल करके, सुखदायक करके, सुहावना करके दिखाया, सुहायमान, सुहावना मैंने सुहायमान करके दिखाया है। भगवान की भावना से संत महंत हुए, ऐसे आत्मस्वरूप भगवान की भावना से संत महंत हुए। अब दीपचंद जी अपनी बात करते हैं, इसलिए वो बात अभी पैराग्राफ को लिया है कि मैं भी यही भावना का अवगाढ़ स्तंभ गाढ़ा है, रूपा है मैंने गाढ़ा है, ये अपना परिणाम का बात किया है कि मैंने भी ऐसी भगवान की भावना, आत्मस्वरूप की भावना का अवगाढ़ स्तंभ स्थापित किया है, गाढ़ा है, थंब क्यों किया कि वो लड़ाई होती है उसमें विजय स्तंभ होता है और वहाँ अपना ध्वज लहराते हैं, जहाँ तक वो आगे बढ़ते हैं, जिसके प्रदेश बढ़ता है वहाँ उस स्तंभ का रोपित करते हुए उस पर ध्वजा अपना फ्लैग को लहराते हैं, ऐसे हम भी हमें मोक्ष मार्ग में जितने आगे बढ़े हैं, वहाँ विजय स्तंभ को स्थापित किया है, यहाँ से हम पीछे जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है स्तंभ गाड़ने का, कि हम यहाँ से पीछे हटेंगे नहीं। ऐसे अंदर में लड़ाई किया, यहाँ तक कब्जा कर लिया, अब हम इससे पीछे जाएंगे, ऐसे लड़ाई कर करके हम आगे बढ़े हैं, अब पीछे जाने वाले नहीं। अप्रतिहत भाव से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं पड़ेंगे। नहीं जाएंगे हम पीछे, नहीं जाएंगे, कब्जा करके आगे आए हैं, अब पीछे जाएंगे। सम्यक दृष्टि को ऐसा निरंतर अभ्यास रहता है, ऐसा परिणमन का अभ्यास सम्यक दृष्टि को निरंतर रहता है, हमको भी रहता है, ऐसा करके पुकनी बात डाल दिया और कहते हैं कि सबको ऐसा ही रहता है, जैसा मुझको रहता है ऐसा सबको रहता है। सम्यक दृष्टि को कर्म के अभाव से, कर्म के अभाव से स्वरस मंडित सुख का पुंज प्रकट होवे, सब ज्ञान कृत कृत्य होता है। कृत कृत्य मैंने क्या, कभी कुछ करने का बाकी, सुख मिल गया, सुख का प्रयोजन है और सुख मिल गया, कृत कृत्य हो गया, अब मुझे कुछ करने का बाकी, कृत कृत्य मैंने करने लायक को कर लिया, जो करने लायक हाँ वो कार्य मैंने कर लिया, उसको कृत कृत्य कहते हैं। कृत्य मैंने करने योग्य, कृत मैंने कर लिया, यह आत्मा का स्वरूप गुप्त हो रहा है, वो साक्षात कैसे हो, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कैसे अनुभव में आए, तो कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान द्वारा भावना को बढ़ाने से साक्षात होता है। स्वरूप की भावना जितनी बढ़ती है तो वो साक्षात हो जाता है, आत्म भावना भाव का जीव लय केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान बड़े मतलब अतिसूक्ष्म ज्ञान है, वो तो परोक्ष है, वो लेकिन वो ज्ञान से स्वरूप को ज्ञान में लेकर के पाते हैं, सिर्फ जानते नहीं है लेकिन पाते हैं, पूरा जानने का नहीं है, भावना समेत जानने की बात है, ऐसी बात है, वो भावना है वो प्रत्यक्ष कर लेता है, परोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कर देता है। इसका विषय प्रत्यक्ष होने से तदाकार परिणामी होकर के वो प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान, ज्ञान में कैरेक्टर कैसा है, ज्ञान की एक शक्ति है, गुण है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो वो जिसको अवलंबन होता है उस आकार को वो धारण कर लेता है, जिसका भी वो अवलंबन करता है उस आकार को वो धारण कर लेता है। जैसे कि मिठाई खाया तो जैसे मैं मीठा मीठा हो गया सारा का सारा, और बहुत कड़वी चीज खाया तो मैं कड़वा कड़वा हो गया, उस रूप तदरूप सदाकार परिणाम कर लेता है। ऐसे आत्मा स्वरूप से सहज अनंत प्रत्यक्ष है, कैसा है, अनंत प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान में जो अनंत प्रत्यक्षता प्रकट हो गई वो कहाँ से आई, कि अंदर थी वो प्रकट हुई, करके वो प्रत्यक्ष परिणाम करने लगा। परोक्ष द्वारा मैंने पहले परोक्ष था, भावना पाया कि मैं तो ऐसा प्रत्यक्ष हूं, तो भाते भाते वो प्रत्यक्ष हो गया। भाते भाते जैसा जैसा स्वरूप हो, स्वरूप को भाते भाते जैसा स्वरूप है वैसा उदाकार परिणामी हो गया। इस तरह से और सर्वथा परोक्ष नहीं है, जानने में परोक्ष है, वेदन में प्रत्यक्ष है। जानने में वो परोक्ष है लेकिन वेदन में प्रत्यक्ष है, इसलिए ज्ञान सर्वथा परोक्ष नहीं है। और साधक दशा में सर्वथा प्रत्यक्ष भी नहीं है, कथनचित परोक्ष है और कथनचित प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष अंश द्वारा अपने अनंत प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष तौर से अवलंबन करके प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है कि प्रत्यक्ष अंश द्वारा मुझे वेदन अंश द्वारा अपनी अनंत प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष तौर से अवलंबन कर लेता है, एक परिणमन करने की विशेषता है। तो काम करने का भी तौर तरीका तो होता है कि नहीं होता है, वो एक तरीका है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकट होने का। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रत्यक्ष तौर से अवलंबन करता है कि मैं ऐसा प्रत्यक्ष हूं, तो परिणमन करने वाला भी प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो उस वक्त आनंद की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति भी होती है, अतीन्द्रिय सुख की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय शांति की भी उत्पत्ति होती है। ऐसा होता है वेदन प्रत्यक्ष इसलिए है कि वेद्य वेदक दो नहीं है, जो हो तो परोक्ष बना हुए ना, वो खुद ही वेद्य भी खुद ही है, वेदावा योग्य भी खुद ही है, वेदन में आने योग्य भी खुद ही है, और वेदन करने वाला वही पर्याय है, इसलिए परोक्ष बना हुए कहाँ से। वो तो सवाल ही नहीं, वेद्य वेदक पना में कोई भेद पड़ता ही नहीं, मैं ही मैं हूँ अवैध रूप से, और अवलंबन सहज अनंत प्रत्यक्ष का है। देखता है वो प्रत्यक्ष अंश से अनंत प्रत्यक्षता को अवलंबन करता है, और उसमें भाव आता है, जिस प्रकार से भाव आता है वो तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष तौर से मैं ऐसा ही गुड भाषा में है। एकांत शुद्ध अनुभव रूप में हो, 621 पेज है गुजराती में, आखिर का पैराग्राफ है। सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न हूँ, सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न ज्ञानमय हूँ, ऐसा लेना है। नास्ति के समय आ गई, अकेली नास्ति भिन्न हो भिन्न तो नास्ति बना हो गया। सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न ज्ञान में हूँ, एक केवल असंग चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध मैंने असंग चैतन्य स्वरूप हूँ। क्यों? सर्व को जानते हुए भी और कसाई बगल में होते हुए भी मेरा असंगपना वैसा का वैसा रहता है, मैं किसी से लेपायमान नहीं होता, निर्लेप चैतन्य हूँ, असंग चैतन्य हूँ माने निर्लेप चैतन्य हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध में से दो काम निकलता है, निर्लेप हूँ और असंग हूँ, किसी से मेरा संग हुआ परमोत्कृष्ट कैसा हूँ मैं, परम उत्कृष्ट अनंत उत्कृष्ट मैंने कितना अनंत अचिंत सुख स्वरूप मात्र हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ ना, कितना अनंत सुख है कहते नहीं उसको, चिंतन में नहीं आए निकल पाते ऐसा मैं हूँ, और एकांत शुद्ध अनुभव स्वरूप अनुभव रूप अनुभूति स्वरूप प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लेना है, क्योंकि वेदन प्रत्यक्ष है अनुभव प्रत्यक्ष है, तो एकांत ऐसा हूँ, एकांत मैंने क्या अनादि अनंत ऐसा हूँ, अबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आता है, इसलिए एकांत है वो, ना एकांत शब्द लिया, यहाँ अनुभूति की बात आई ना एकांत लिया, क्योंकि ज्ञान में वेदन ज्ञान वेदन एकांत रहता ही है, वहां किसी की पहुंच नहीं है, मैं एकांत अनुभूति स्वरूप प्रत्यक्ष हूँ, क्योंकि वेदन में परोक्षता होती नहीं, इसलिए मैं प्रत्यक्ष स्वसंवेदन स्वभावी विक्षेप क्या विकल्प क्या क्या भय क्या दुख खेद मैंने दुख क्या और अन्य अवस्था क्या, मैं मात्र निर्विकल्प हूँ, ऐसा मैं निर्विकल्प हूँ, कोई भेद मेरे में नहीं है, मैं शुद्ध शुद्ध दूध से लिया है, मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध सर्वोत्कृष्ट शुद्ध कैसा नहीं है प्रकृष्ट शुद्ध, मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध प्रकृष्ट मैंने उत्कृष्ट प्रकृष्ट मैंने उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट उसको प्रकृष्ट कहते हैं सर्वोत्कृष्ट वो प्रकृष्ट है, मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परिपूर्ण पवित्र हाँ शुद्ध पवित्र और परम शांत सुधारक मैं चैतन्य, कितनी शांति है कैसी शांति है कि सुधा मैंने आनंद सुधा मैंने अमृत सुधा मैंने अमृत सुधाकार सुधा अमृत अमृतमयी शांति है, मेरी शांति कैसी है ऐसी जैसा अमृत मीठा होता है ऐसी मीठी 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 शांति है, परम शांत सुधामयी चैतन्य बेहद परम मैंने बेहद ऐसी मीठी शांति भी कितनी है बेहद प्रदेश प्रदेश में बेहद शांति अमृत में बेहद शांति मेरे में भरी है,
फिर शांति कैसी
ऐसा मैं हूं तो अशांति
कैसी
बोल देना आत्मभावना भाई ऐसी आत्मभावना भाते भाते आत्मभावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान अनुभव तो होए समय दर्शन तो होए अरे केवल ज्ञान भी हो जाए मात्र निर्विकल्प हूँ या दूसरी अवस्था आप जो दस लिए यहाँ से निकालते हैं कि मैं परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूँ क्योंकि बहिर्मुख होने में विकल्प होता है, मैं तो परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूँ एक अंश में बाहर निकलू परिणाम बाहर निकले वो मेरा स्वरूप परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी डूबा हुआ हूँ मैं मेरे में डूबा हुआ
हूँ कि नारियल पर नए नए श्रीफल आते ही रहते हैं, नारियल पर नए नए श्रीफल आते ही रहते हैं। जो बहुत बुद्धिमान व्यापारी होते हैं वो नारियल लेने के लिए बाजार में नहीं जाएगा, वो नारियल ही तक पहुंचेगा। क्या क्यों? तो जो नारियल बेचता है तो मुनाफा करके बेचता है, तो इतना महंगा क्यों लूं मैं खुद ही नारियल पर चढ़ जाऊं खुद में आ जाएगा नारियल। ऐसा यहाँ भी आत्मा सचोड़ी मैंने समझ गुजराती शब्द है काठियावाड़ी काठियावाड़ी सचोड़ी मैंने हिंदी में भी शब्द तो होगा समग्र सचोड़ी में ईटोन भी जाओ तो भाषांतर में ओरिजिनल टोन नहीं आता है, टोन बदल जाता है, टूट जाता है, मूल भाषा में टोन है। हमारा थोड़ी नहीं है अभी पूरी तो कर रहे हैं मैं मात्र परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी निरंतर दूसरा ज्ञान है, मैं निज स्वरूपमय ऐसा इतना इतना बता लिया ने, मैं हूँ असंग हूँ सुल्तान हूँ सुपोषणुति स्वरूप हूँ निर्विकल्प हूँ ऐसा 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 अभेद निज स्वरूपमय उपयोग को करता हूँ मैंने मैं ऐसे मुझे भेद स्वरूप में सावधान होकर के लीन होता हूँ, सावधानी से लीन होता हूँ, ऐसा मैं हूँ ऐसा अंतर सावधानी में आता हूँ तो कहते कि मैं उपयोग करता हूँ और मैं उस प्रकार से मुझे भेद स्वरूप में व्यापक भाव से तन्मय होता हूँ, व्यापक बना देना पूरा प्रसव जाता हूँ मेरे स्वरूप में, इस प्रकार से लीन हो जाता हूँ, ये आत्मभावना है। सत्पुरुष का उपकार गाया है रचनामृत में सत्पुरुष का उपकार गाया है, किस तरह से उपकार गाया है, उपकार गाने के लिए कृपालु देव की लाक्षणिक पद्धति है, उपकार गाने की भी अपनी एक खास पद्धति है, जो अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीटी स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य और कोई नहीं है, सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, वह अचिंत्य द्रव्य कौन है कि सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, तो दूसरे की बात नहीं चल रही है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया उसका अपार उपकार है। उपकार करने की बोलने की पद्धति भी है ना, एक
घर जाने की बात है तो इतनी लंबी देरी बात कर दिया। अचिंत्य मैंने क्या कि जिसका चिंतन करते हुए भी चिंतन की पहुंच नहीं हो, चिंतन करते 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 भी इसकी चिंतन की पहुंच यहाँ नहीं हो, ऐसा चिंतन से अगम अगोचर, चिंतन से भी अगम अगोचर, लेकिन ज्ञान से सुगम सुगोचर, सिद्धा ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से सुगम सुगोचर। घबराने की जरूरत नहीं, अगम अगोचर बोला तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ज्ञान से तो सुगम सुगोचर, क्योंकि ज्ञान में तो सिद्धा आता है, जहाँ ज्ञान अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होते ही सीधा अवलंबन में आता है, सुगम सुगोचर, क्योंकि बीच में कोई आड़े आ ही नहीं सकता, ज्ञान अंतर्मुख होता है तो बीच में कोई आड़ा आता नहीं है, चिंतन करता है तो विकल्प आड़ा आता है, लेकिन अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख अवलोकता विलेखता निर्वाण उपजे मोह विकल्प थी समस्ता संसार, अंतर्मुख अवलोकता ये बद्धा विकल्पों ने विलेखता वार लगे, विकल्प से चिंतन के विकल्प से तो ये स्वरूप है वो बिल्कुल अगम अगोचर है, क्योंकि विकल्प की वहां पहुंच नहीं है, विकल्प में वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं, वो योग्यता योग्यता नहीं कि वहां पहुंचे वो है, जबकि अंतर्मुख ज्ञान का सीधा ही स्वयं का अवलंबन आता है, इसमें बीच में कोई आड़े आ सकता नहीं। तो चिंतन से तो अगम अगोचर है, लेकिन सीधा ज्ञान से अंतर्मुख ज्ञान से तो सुगम सुगोचर है, सर्व सुगम, सर्वत्र उसकी प्राप्ति हो सकती है, नारकी में वो तो वहां प्राप्ति हो सकती है, देवलोक में तो वहां प्राप्ति हो सकती है, इसमें वो तो वहां प्राप्ति कहीं भी हो जाती है, ऐसा चिंतन द्रव्य इसकी शुद्ध चैतन्य स्थिति, मैंने शुद्ध चैतन्य की जो पर्याय है उसको शुद्ध चिति कहते हैं, चैतन्य की परिणति शुद्ध चिति, चैतन्य में दर्शन ज्ञान भी एक है, ज्ञान में एक रूप ज्ञान, चैतन्य में दर्शन ज्ञान भी एक है, शुद्ध चिति स्वरूप कांति, कांति मैंने तेज, कांति मैंने तेज और कांति मैंने शुद्ध चैतन्य की शोभा, कांति को रूप कहते हैं, तेजस्विता का रूप हो उसको कांति कहते हैं, जो रूप तेजस्वी होता है ना उसको कांतिमय कहते हैं, कांति में तेज भी है और शोभा भी है, दोनों का एक रूप होवे तो कांति बनता है, ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप कांति परम प्रकट होकर के, परिपूर्ण प्रकट होकर के अवस्था को भी अचिंत्य कर देता है, तो वो भी अचिंत्य होती है, उसका भी चिंतन कर सकते हैं, वह अचिंत्य द्रव्य, ऐसा अचिंत्य द्रव्य जिसमें से अचिंत्य तेजस्वी कांति प्रकट होती है, ऐसा अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, वो तो मेरा स्वरूप है, ऐसा दूसरे की बात नहीं है, मैं ऐसा हूँ स्वाभिमान, मैं ऐसा स्वाभिमान तेजस्वी हूँ, ऐसा निश्चय प्रकाशित किया, सत्पुरुष ने ऐसा निश्चय प्रकाशित, मैं तो भूल गया था, कोई भान नहीं था। तो सत्पुरुष ने बताया, देख तो ऐसा है अंदर में, जरा गौर से देख, तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम ऐसा है। ऐसे सत्पुरुष का कितना उपकार है, पार पार उपकार है, उपकार का कोई पार नहीं है। मैंने कोई सीमित उपकार नहीं है, असीम उपकार है। इतना हो गया, बंद कर दिया, सत्पुरुष का उपकार था ना, इसके सामने हमने इतना कर दिया, अपना समर्पण किया, उतना समर्पण किया, अपार उपकार है। ऐसा करके सत्पुरुष के उपकार को गाया है। ऐसी भावना का अवगढ़ स्तंभ गाढ़ा है, ऐसा कहते हैं कीर्तन जी। ऐसी भावना का मैंने अवगाढ़ स्तंभ गाया गाढ़ा है, और मेरा ज्ञान भी कृतकृत हो रहा है। वो आत्मा का स्वरूप अब तक गुप्त रहा है, वो कैसे साक्षात हो, जो भावना भाने से साक्षात होता है, वो किस प्रकार से सिद्ध होता है, प्राप्त होता है, ये बात कहने में शांति देने का करके फिर उसी बात को खोल खोल करके कहेंगे, अलग अलग पहलू से बार बार खोल करके वही अनुभव।